दूसरा राजा अध्याय 4 पद 1 और 2। भविष्यत वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिशा ने उसे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर के एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, ठीक है, अपने पुत्रों को भेजकर पड़ोसियों से सब पात्र मांग लाओ, घड़े बाल्टी जो भी बर्तन मिले ले आए, पर थोड़े न हो, जितना अधिक से अधिक वे ला सके ले आए। तब वो घर का दरवाजा बंद करके हांडी का तेल उन बर्तनों में उंडेलती गई। अध्याय 4 पद 5 और 6। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया, तेल मानो इतना बढ़ता गया कि सब बर्तन भर गए। वो स्त्री एलिशा के पास आकर बोली, अब मैं क्या करूं? और उसने जवाब दिया, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उसे तू अपने पुत्रों सहित अपना जीवन निर्वाह कर। अध्याय 4 पद 8 से 12 तक। फिर एक दिन की बात है कि एलिशा शूनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। और जब जब वो उधर से जाता तब तब वहां रोटी खाने को उतरता था। और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करता है वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है, तो हम भीत पर एक छोटी उपरौटी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें, कि जब जब वो हमारे यहां आए तब तब उसी में टिका करे। एक दिन की बात है कि वो वहां जाकर उस उपरौटी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शूनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। एलिशा उनकी सेवा का बदला चुकाना चाहता था, इसलिए उसने उस स्त्री से पूछा, तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? क्या मैं तुम्हारे लिए राजा से कोई सिफारिश कर सकता हूं? मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूं। उस स्त्री ने उत्तर दिया, मैं तो अपने लोगों के मध्य वास करती हूं, मुझे राजा से या सेना के प्रधान से भेंट करने की अभिलाषा नहीं है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि मैं अति संतुष्ट हूं। परंतु गेहजी ने एलिशा से कहा, देख, उसकी कोई संतान नहीं, उसका पति वृद्ध हो चुका है। अध्याय 4 पद 15 और 16। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वो द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे, मेरी आशाओं को मत जगाओ। परंतु उसका कहा सच हुआ और एक वर्ष के भीतर वो अपने बेटे को गोद में खिला रही थी। अध्याय 4 पद 18 से लेकर 23 तक। और जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वो अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया, और उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सिर, आह मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वो उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वो दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर किवाड़ बंद किया, तब उतर गई। और उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो जाऊं। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का और ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। ये ऐसी ही बात है जैसे आज आप क्यों चर्च जाना चाहते हो? आज ना तो रविवार है और ना कोई मौका है। अध्याय 4 पद 24 से लेकर 27 तक। तब उस स्त्री ने गधी पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाँ के चल और मेरे कहे बिना हांकने में ढिलाई ना करना। तो वो चलते चलते कर्मेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वो शूनेमिन है, अब उससे मिलने को दौड़ जा और उसे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। वो पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। इससे प्रकट होता है कि एलिशा का ये वरदान परमेश्वर की ओर से था। आज अनेक लोग इस वरदान को उसकी मानसिक शक्ति कहते हैं कि वो किसी के विचार पढ़ने या भविष्य देखने में सक्षम था। एलिशा की ये बात इसलिए लिखी गई है कि हम जाने कि वो सामर्थ उसे परमेश्वर ने दी थी और परमेश्वर जब चाहता तब इस वरदान को रोक सकता है। उसे उस समय भी हमारी तरह कुछ पता नहीं चला। वो वास्तव में उतना ही जान पाता था जितना परमेश्वर प्रकट करता था। वो खुद चकित था कि परमेश्वर ने उसे क्यों छिपा कर रखा था, कि शूनेमिन स्त्री के साथ क्या समस्या थी। मैं तो तब चकित होता हूं जब परमेश्वर मुझ पर कुछ प्रकट करता है, परंतु उसके आश्चर्य का कारण था कि परमेश्वर ने उस पर कुछ प्रकट नहीं किया। वो जानता था कि उस स्त्री की समस्या है और यहोवा ने उसे छिपा ही रखा। अध्याय 4 पद 28। तब वो कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? और तू जानता है मेरा मन इस बालक पर लगा था। अध्याय 4 पद 29 और 30। तब एलिशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना, और मेरी ये छड़ी उस लड़के के मुंह पर धर देना। वहां रुकना नहीं, किसी से बात नहीं करना, बस भाग जाना। तब लड़के की मां ने एलिशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। तो वो उठकर उसके पीछे पीछे चला। यहां मां का प्यार दर्शाया गया है, उसके प्यार की शक्ति दिखाई गई है। मेरा मतलब, वो कोई प्रतिनिधि स्वीकार नहीं कर रही थी। किसी सेवक को मत भेज, तू समझता है कि उसे भेजकर तू छूट जाएगा, मैं तुझे लेकर ही जाऊंगी। उसका इरादा पक्का था कि एलिशा उसके साथ जाए। वो गेहजी का दौड़ के जाना और उसकी छड़ी लड़के के मुंह पर रखना स्वीकार नहीं कर रही थी। अध्याय 4 पद 31 से लेकर 44 तक। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा और न उसने कान लगाया। तब वो एलिशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया कि लड़का नहीं जागा। जब एलिशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेला भीतर जाकर किवाड़ बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वो चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और वो लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी और वो उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलिशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, शूनेमिन को बुला ले। जब उसके बुलाने से वो उसके पास आई तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वो भीतर गई और उसके पांव पर घिर भूमि तक झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। तब एलिशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे और उसने अपने सेवक से कहा, हांडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकवार भर इंद्रायन तोड़ ले आया और फांक फांक करके पकाने के लिए हांडे में डाल दिया और वे उसको ना पहचानते थे। तब उन्होंने उस मनुष्य के खाने के लिए हांडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हांडे में मृत्यु है, और वे उसमें से खा न सके। तब एलिशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उस हांडे में डालकर कहा, उन लोगों को खाने के लिए परोस दे। फिर हांडे में कुछ हानि की वस्तु ना रही। और कोई मनुष्य बाल शलीश से पहले उपज हुए जव की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया, क्योंकि वहां 100 भविष्यद्वक्ता थे। तो एलिशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे धर दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। इस चमत्कार ने हमें नया नियम में मसीह के द्वारा 5,000 मनुष्यों को खाना खिलाने की याद दिलाई, जिसमें 5,000 पुरुषों के अतिरिक्त महिलाएं और बच्चे भी थे। मात्र 5 रोटी और 2 मछलियों से उसने उन सबको खाना खिलाया था। उसी तरह का चमत्कार यहां पर भी हुआ, जहां 100 पुरुषों ने 20 रोटी और हरी बालों में से खाया और खाने के बाद बच भी गई।